نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 18 18th پارا ہے قد افلح کامیابیوں سے بھرا ہوا پارا. اس کا اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے تشیع الفاحشہ سے پاک معاشرہ. سورت مومنون اور سورت نور اور اس کے بعد کچھ حصہ سورت الفرقان. ان میں آپ نوٹ کریں گے کسی بھی معاشرے کی پاکیزگی کے نکات کو. یاد رکھیے کہ اسلام نے ایک ایسا خوبصورت معاشرہ قائم کر کے دکھایا جہاں حیا کا غلبہ تھا, جہاں دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگتی تھیں, جہاں کی عورتیں اور بچیاں با حیا لباس پہنتی تھیں, جہاں کے مرد یغدو من ابصارہم پہ عمل کرتے تھے. نتیجہ کیا تھا کہ وہ دنیا کے لیے ایک بہترین دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے لے کر صحابہ کرام اور 1000 سال تک کا دور اگر آپ دیکھیں تو آپ اس میں حیران ہو جائیں گے کہ وہ دور تھا کہ جس میں پوری دنیا میں امن تھا. جب تک مسلمان 70ویں پارے کی آخری آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے, صرف مسلم ملک نہیں پوری دنیا میں امن تھا, پوری دنیا میں چین تھا. آج بھی دنیا میں جو فرسٹریشن ہے, پریشانی ہے, اس کی وجہ ہم مسلمانوں نے وہ کام چھوڑا ہوا ہے. آج آپ دیکھیے کہ آنکھ اٹھاؤ تو آنکھ شرمندہ ہو جائے, کانوں میں وہ گندی باتیں پڑتی ہیں کہ کان بوجھل ہو جاتے ہیں. آپ فون کی سکرین کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. صبح میں بالکل اپنا پڑھ رہی تھی, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, میں نے کہا دیکھوں کہ انہوں نے آج کا تھم نیل لگا دیا یا کیا ہے. تو میں نے یوٹیوب کھولا, نور القرآن ٹی وی چینل کھولا, تو ہمارا جب کھولا نا تو اس کے نیچے ایک سٹل چیز تھی, یعنی یوٹیوب کی مین ونڈو جب کھولی نا تو اس میں کیا تھا, کچھ ایسی ڈمٹی ڈمٹی سی تصویریں تھی, چائلڈش چیز تھی, اور اس پہ کچھ ایسا لفظ تھا کہ میرا دماغ اس پہ چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا اور یہ کہاں سے آ گیا. میرے تو فون پہ کبھی کسی نے کارٹون نہیں کھولا, کیونکہ موسٹلی ہوتا کہ جو آپ کھولتے ہیں نا وہ کھلنے لگ جاتا ہے آؤٹ آف کیوریسٹی. اور مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تو آج یہ پڑھانا ہے, لیٹ سی. نیچے میں نے دیکھا تو 3 منٹ کی کوئی ویڈیو تھی, میں نے اس کو کلک کیا. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو دکھا نہیں سکتی وہ کیا تھا اور وہ اوپر کیسے آیا ہوا تھا. پیسے دے کر ایڈورٹائز کرتے ہیں لوگ, دین والے بھی کرتے ہیں, دنیا والے بھی کرتے ہیں, اور پورا دیسی تھا. پاکستان میں رہ کر پاکستان کے ایڈز آتے ہیں جی. آپ کو فرانس میں جائیں آپ کو فرینچ کے ایڈ آتے ہیں, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ چلے جائیے جرمنی تو آپ کو ان کی زبان میں آئیں گے. آپ کی دیسی ویب سائٹ جو بھی ہے اور آپ کے بچوں کو جو وہ کارٹون کے نام پہ وہ ڈانس, میں کہہ سکتی ہوں کہ آج سے کوئی 20-30-40 سال پہلے انڈین مووی کے اندر جو ایک ولگر ڈانس ہوتا تھا نا, جس پہ باپ اور بھائی کو آگے کر دیتے تھے کہ یہ بچوں کے دیکھنے والا نہیں, وہ اس سے بھی نیوڈ تھا. کارٹون ہی تھے لیکن پورے نیوڈ تھے. اور میں سوچ میں تھی کون سی مائیں ہیں کہ جن کے بچے یہ دیکھیں گے, اور جنہوں نے پیسے لگا کے اس کو مونیٹائز کر کے اوپر کیا ہے تو وہ پیسہ ایسے ہی تو نہیں وصول ہونا. وہ ایک میں کھول لوں گی نا یا جو بچہ کھولے گا اس کے اوپر دسیوں اور چیزیں ہوں گی. تو آج جس معاشرے میں ہم ہیں یہ پاک معاشرہ نہیں ہے. اس میں آپ امریکہ, کینیڈا, چائنا, فرانس, اے بی سی, پاکستان, سعودیہ, یو اے, یو کے, دبئی, سب فرق مٹا دیجئے. پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. مجھے بالکل کوئی فرق نہیں دکھتا امریکہ کینیڈا سے لے کر پاکستان آنے تک کے رستوں میں. یہاں طور بھی بے مقصدیت ہے, یہاں بچوں کے پاس پیسہ بہت ہے, ماں باپ بہت لاٹ دیکھتے ہیں اور بہت کچھ ہے, غلط نہ سمجھیے گا میری بات کو. تو جس دنیا میں آج میں اور آپ ہیں یہاں تشیع الفاحش ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہم سورت نور میں جائیں گے تو سمجھیں گے. سپریڈنگ دا فحش, کھل کے فحاشی پھیلا رہے ہیں اب لوگ, پہلے ڈھکی چھپی تھی. کبھی آپ سوچیے کہ خواتین کی کبھی کوئی پرسنل یوز کی بھی چیزیں کوئی لے کے جاتا تھا نا تو اس کو اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کے دیتے تھے. کوئی انڈر گارمنٹ کسی کھلی جگہ سے لے آئے دے دے. آج آپ کے بل بورڈ پہ ایڈ لگے ہوئے, پتہ نہیں ٹی وی پہ بھی آتی ہوں گی ایڈس. وہ خفیہ چیزیں جو ڈراموں میں بھی کبھی آتی تھی تو ڈھک چھپ کے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا, بچے تھے, بڑوں کو پتہ لگ جاتا تھا وہ مسکرا دیتے ہوں گے. انڈین فلمیں ہمیں کوئی دیکھنے نہیں دیتا تھا کہ یہ تو بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہوتی. ہاں ہمارے ڈرامے بڑے پاک صاف ہیں. آج جس معاشرے میں آپ پر میں, یہ کیچڑ ہے, تشیع الفاحشہ کیچڑ ہے. ये दलदल है, और दर्द को महसूस करती हैं उन माओं के जिनके चार चार छः छः बच्चे बाहर की दुनिया में एक्सपोज हैं। कहाँ रखें बच्चों को? घर पढ़ाएंगी आप, होम स्कूलिंग कर लेते हैं, बाहर की दुनिया में एक ऑप्शन है, होम स्कूलिंग करें। वल्लाही वो माएँ जो तड़प तड़प के अपने बच्चों को वो मुर्गी के परों की तरह अपने परों के नीचे रखती हैं, जब वो बच्चे बड़े होकर ज़रा से बाहर होते हैं तो फिर देखिए क्या खुलते हैं। बच्चों को फुल टाइम मुस्लिम स्कूलों में डालते हैं पेरेंट्स। जब हम अमेरिका में थे ना तो एवरेज फीस $300 थी प्राइवेट स्कूलों की, इस्लामिक स्कूल, और अमेरिकन स्कूल सब फ्री हैं, जीरो जीरो डॉलर, क्योंकि हमारे देशों के टैक्स से सब काट लेते हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं। तो माँ बाप वो कहते हैं ना पेट काट काट के कि फ्री स्कूल से बच्चे को निकाल कर इस्लामिक स्कूलों में दाखिल करते थे। और ये लास्ट टाइम जब मैं गई अटलांटा तो मैंने पता करवाया था कि एवरेज अब इस वक्त $600-700 है एक बच्चे की फीस, जो वहाँ रहते हुए अफोर्डेबल नहीं है बिल्कुल। यहाँ वाले कर सकते हैं $600 अफोर्ड, नो प्रॉब्लम, वहाँ वाले नहीं कर सकते, लेकिन वो भेजते हैं वल्लाही। चलो कुछ नहीं, और एक से दूसरा तीन बच्चे भेजने हो तो 90% तनख्वाह चली जाती है बेचारे मर्दों की, लेकिन माँ बाप भेजते हैं। लेकिन क्या वो बच्चे ठीक हो रहे हैं? जूँ ही वो मैट्रिक करके कॉलेज में जाएंगे तो दुनिया बदलती है। तो इस वक्त जिस माशरे में आप और मैं, वहाँ कचरा है, कूड़े के ढेर हैं, फाशी के ढेर हैं। ये तो वो है ना जो पुराने हो गए हैं, ओल्ड डेटेड, ये LGBT के नाम और दूसरी चीज़ों को डाल दें तो ये आजकल का मॉडर्न कूड़ा है, ये आज का मॉडर्न कचरा है, ये फिल्थ है, ये सफर है, ये वो गंदगी है कि जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े कैंप्स बना दिए। बाहर के मुल्कों में ये टिश्यू पेपर अगर आप बाहर रोड पे जाते हुए फेंक दें और कैमरे की निगाह में आप आ जाएं तो आपके घर पे वो आ जाएंगे कि आप ये क्या कर रही हैं। तीन चार कलर के कूड़े के हमारे बाहर ड्रम होते हैं, आपके खाने का जो लेफ्ट ओवर है ना उसको ग्रीन कलर्स के बैग्स में आपने डालना होता है, आपके प्लास्टिक के जैसे रैपर्स उतरते हैं तो ब्लू कलर के रैपर है और उसके अंदर डॉट्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसमें आप उसको करते हैं। फिर जनरल कचरा जो कूड़ा जिसको आप बोलते हैं वो एक और में डालना है, और बाहर आपके ड्रम्स हैं आपने ग्रीन को एक बैग में फेंकना है, ब्लू को एक में फेंकना है, फलां को। अच्छा ठीक है, हो गया। और अगर आपके कचरे वाले डब्बे में से कोई गड़बड़ निकल आए, घरों के बाहर ही तो पड़ा है, उन्होंने हर हफ्ते आना है और आपसे उठा लेना है, वो आपको नोटिस भेज देंगे कि आपको कचरा नहीं फेंकना आता। जहाँ ज़ाहरी सफाई का इतना इहतमाम है वहाँ तशील फाहिशा का हाल क्या है? आप बेशक कपड़े ना पहने, आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। जिसको नहीं देखना वो ना देखे, अब हम क्या करें, हमने नहीं पहना, हमें गर्मी लग रही है, फिर आप क्या करें? लड़की लड़की, लड़का लड़का, लड़का लड़की, आधा लड़का आधी लड़की, आधी लड़की आधा लड़का। शायद आपको मैंने बताया था, मुझे चंद दिन पहले किसी ने भेजा कि किसी जगह ग्रोसरी के दौरान जो उनका हेल्पर था, ग्रोसरी उनकी डाल रहा था या डाल रही थी, वो कहती कि मैंने उसको समझी कि वो औरत है, तो एकदम मेरी नज़र पड़ी तो उसने अपनी आधी बॉडी को, यानी आप ज़रा सोचिए इस बात को, तशील फाशा के दर्द को महसूस कीजिए। वो कह रही है जो कर रही थी मुझे समझ नहीं कि क्या है, उसकी एक साइड पे मेकअप था डार्क कलर का और दूसरी साइड प्लेन थी, एक तरफ के बाल लड़कियों वाले थे तो दूसरी तरफ के लड़कों वाली बाल थे, उसके कपड़े आधे लड़कियों और आधे लड़के ले, और वो कह रही है कि मैं परेशानी में चीज़ें अपनी डलवा के ले आई और मुझे अभी भी नहीं पता कि वो लड़का था कि लड़की। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है? और ये फैशन हो जाएगा? है, अभी भी है, और ये हमारे बच्चे भी करेंगे। ये सिर्फ आपने जितनी धूम धड़के की शादियां करनी है कर लें, 8-10 साल का खेल है, सब खत्म हो जाएगा। बच्चों ने आके आपको कहना क्या आप बैकवर्ड हैं, शादी करो, लड़की से शादी करो, मामू की बेटी से शादी करो, मैं तो मामू के बेटे से करूँगा। ये सारी जो बाहर गंदगी है, ये पूरा पारा क्या है, बस कह लीजिए कि अल्लाह ताला आपको वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा करके बता रहा है कि उम्मत मुस्लिम अपना हिस्से का काम करो। साहबा और साहबियात की हया और पाकीज़गी अगर आप उसको सामने रख लें तो आपको ये पता चलेगा कि उन लोगों ने कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी ली हुई, लेकिन उन्होंने इस सारे काम को कैसे किया। तो आज अगर हम इस बारे में से कुछ मिसालें प्रैक्टिकल किस्म की देखें जो साहबियात से मुतल्लिक भी हों और फिर कुछ साहबा की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि आखिर आज करने का काम क्या है। आप देखिए कि साहबा और साहबियात की आंखों में हया थी, चेहरों पे हिजाब थे, मैनर्स में अदब थे, दिल दिमाग में सब्र, शुक्र, आजजी और मुनकसिरुल मिजाजी थी, और बोलने में वो कम गो थी। अमल में इतात गुजारी थी और वफा शुआरी थी, शफकत और मेहरबानी का वो बेकर थी। अगर ये सारे आप नहीं भी लिख सके, बाद में लिख लीजिएगा, ये इंडिविजुअली हर औरत और हर बच्ची और मर्द में अमूमन ये खूबियाँ थी, यानी एक पाकीज़ा किरदार था। अभी हम पढ़ने लगे हैं सूरत मोमिनून, आपको उसमें हिंट्स मिल जाएंगे। मैं इसलिए शुरू में सारी बात कर देती हूँ ताकि आपका एक नोट तैयार हो जाए, फिर आप तर्जमे से उसको रिलेट करते रहें। नतीजा क्या निकला? जब औरत और मर्द का किरदार इतना खूबसूरत होगा ना, तो फिर क्या हुआ, शौहर बीवी का ताल्लुक बड़ा खूबसूरत था। देखिए ना, बीवी आजिज है, वफा शौहर है, कम बोलती है, मियाँ को और क्या चाहिए। और अगर मर्द को ले लीजिए, उसकी नज़रें झुकी हुई हैं, या खुद में नफ्सारी, किरदार बड़ा पाक है, घर से मस्जिद, मस्जिद से काम पे, काम से इधर उधर, तीसरी चौथी कोई बेकार आदत ही नहीं, उससे अच्छा शौहर कौन सा होगा। यानी आपके शौहर अगर आंखें उनकी पाक हैं, हया है, आपको फिक्र ही कोई नहीं। आज आप यहाँ बैठी हैं, जान पे बनी होती है, बच्चे पता नहीं घर में क्या कर रहे हैं, मियाँ साहब फ़ोन पे पता नहीं क्या देख रहे हैं, ये ऑफिस में ये सेक्रेटरी कौन है, ये फ़ोन उठाया था तो बंद क्यों हो गया, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। 100 किस्म के मसले हैं आज की इस मॉडर्न दुनिया को, उसकी वजह यह कि तशीएल फाहिश है। मियाँ और बीवी का किरदार खूबसूरत हो ना, देखिए जेब में एक रुपया भी ना हो मियाँ की, वो कवामियत का एक भी हक ना अदा करे, आपको एक डॉलर कमा कर ना दे, बीवी रह लेती है उसके किरदार की बुनियाद पे, कि है तो नेक ना, है तो अच्छा ना, किसी और लड़की से बातें तो नहीं करता, मुझे धोखा तो नहीं देता। सेम थिंग बीवी के साथ है, एक दिन रोटी ना बनाकर खिलाए, वो रोज़ बेचारा बाहर से पकी पकाई रोटियां भी लाए, लेकिन बीवी अच्छी है, कम गो है, अख्लाक अच्छा है, इज्जत करती है, आजिज मिजाज है। मियाँ कहेगा चलो पड़ी हुई है कोई बात नहीं, खाने का गए, रोटियां तो बाहर से बतेरी मिलती हैं, रोटी वाले से रोटी ले लेंगे। और अगर काम करने लिए चाहिए होती तो मासी की बेटी ज़्यादा अच्छी थी, फिर आपको क्यों लाया। किरदार, तरबियत में औरत और मर्द के जो खूबियां ना, वो इस बारे में आप पढ़ेंगे। ताल्लुक शौहर बीवी के बहुत अच्छे थे। अच्छा, थर्ड पेज पे चलिए, अपना किरदार अच्छा था तो शादीशुदा जोड़े अच्छे थे, तो फिर औलाद की तरबियत अच्छी हुई, और सुकून घराना, यानी जो मैंने बोला ना, ये आइडियल है, ख्वाब था, साहबा और साहबियात में इनफरादी तौर पे किरदार बड़ा पुख्ता था, नतीजतन शौहर बीवी के ताल्लुकात अच्छे थे, नतीजतन औलाद की तरबियत अच्छी थी, नतीजतन घर पुरसकून था। अब घर पुरसकून का आप लगाइए, एक ईंट किसी माशरे का घराना एक ईंट होती है, उसके साथ ही ज़रा सा बाहर चलिए तो आपके इस इनफरादी घराने, होम स्वीट होम का असर आपकी सोसाइटी पे क्या पड़ा, इज्तमाही तौर पे हर ईंट जो अच्छी है तो खूबसूरत माशरा बन गया। यह है तथहीर माशरा, इज्तमाही खैर आई, पाकीज़ा पुरसकून घराना बना, नतीजा क्या हुआ, मजबूत ख़ानदानी सिस्टम बना, पुरसकून माशरा बना, बेहतरीन औलाद माशरे को बेहतरीन इंसान दे गई, आपकी इनफरादी खैर इज्तमाही खैर में ढल गई, इधर कुव्वते ईमानी में इजाफा होता जा रहा है, उधर दावत इलल्लाह और जिहाद बिल कलम और ज़रूरत पड़ी तो जिहाद बिल किताल बनी, नतीजा उम्मते मुस्लिमा का अरूज और इस्लाम का गलबा। ये हो चुका 1000 साल अल्लाह के नबी के बाद, सहाबा कराम और उसके बाद से हो चुका। ये वो दौर था कि जिसमें घरों के नक्शे देखिए, ये जनान खाना, ये मर्दान खाना, शादी मस्तूरात, आपने भी तो कभी सुनना पड़ा होगा ना, जब औरत छुपी हुई थी, मस्तूरा थी तो इधर जाएगी, अब गैर मस्तूरात को पर्दे में कौन डाले, जो बाहर खुली फिरती हैं गाय भैंसों की तरह, उनको आपने शादी वाले दिन के अलग कमरे में बिठाना है। आज क्या हो रहा है, कंपेयर कीजिए, असरे हाजिर में बेहयाई है, किरदार में झूल है, जिसको मैं आपकी मेरी लैंग्वेज जो हमें मशहूर लगता है वो कह लूज करेक्टर। आज का मर्द लूज करेक्टर, बीवी को फिक्र पड़ी हुई है ये किधर जाता है, वो घर बैठकर अपनी बीवी के साथ होता है लेकिन वो किसी और औरत के साथ होता है, आज ये भी तरीके हैं मौजूद, वो सोचता कुछ और है और उसके साथ अमल कोई और हो रहा है। नतीजा क्या निकला, कुव्वत ईमानी में कमी हुई, गुनाहों में इंडल्ज हुआ, और जहाँ गुनाह आएंगे वहाँ खैर के काम स्टॉप, खुद भी नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करने देंगे, और नतीजा ज़वाले उम्मत। आज उम्मत की रात है, और ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की रात नहीं है, पूरी दुनिया पे आज जो गंद है, ये हमने सफाई का काम छोड़ा हुआ है, खुला जो छोड़ दिया, हम तो झगड़ रहे हैं अपने फ़िरकों में और अपनी ज़ातों बिरादरियों के मसले मसाइल में, नतीजा क्या निकला कि सब कुछ ख़त्म हुआ। अब आप कहते हैं हाउ कैन वी टेक अ स्टार्ट, शुरू कहाँ से करें, सहाबा और सहाबियात की ये तरबियत कहाँ से हुई, ये जुमला लिख लें। उन्होंने ये हया कहाँ से सीखी? तो 6 रिसेप्टर्स नोट कीजिए, आज आपको मुझे मारे बांधे खुद को और अपने बच्चों और अपने शौहरों और भाई बहनों को इनसे जोड़ना पड़ेगा। नंबर 1, अल्लाह से, फितरत से। आदम और हव्वा ने फितरत से हया सीखी थी, तभी तो न्यूडिटी को छोड़कर पत्ते ही जिस्म पे लगाने लगे, कोई उन्होंने लेसन तो नहीं पढ़ा हुआ था। फिर कुरान से, पिछले अंबिया की शरीयतों से, हज़रत मूसा की हया का जिक्र सूरह अहज़ाब में हम पढ़ेंगे, और नबी सल्लम से हया सीखी। और अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ने फितरी तौर पे बाहया बनाया। सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी को देखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह सुनकर और फिर अल्लाह ताला के साथ ये सारे मामले देखे, तो क्या पता चला? अल्लाह से हया कैसे? अल्लाह ने फितरत का जो असूल बना दिया। अब देखिए, हर जिस्म का उस सोचिए कहाँ है और प्राइवेट पार्ट्स कहाँ हैं। जब तक खुद औरत बेहया ना हो जाए, कोई मर्द उसकी इज्जत पे हमला नहीं कर सकता, पक्की बात है। अल्लाह ने ऐसा छुपा कर जिस्म बना दिया, लेकिन जब औरत हटी तो फिर हया से हटी, फितरत पे पैदा किया। बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी को आप चेंज करेंगे ना, तो एकदम वो अपने पॉन्स में हटता है। माएँ उनको सबके सामने खोल कर उनकी हया को ख़त्म करती हैं। कुरान से हया सीखनी है। आदम और हवा का किस्सा लीजिए, हज़रत मरियम तन्हाई में फरिश्ते को देख के घबरा गई, हज़रत शैब की बेटी देखे तमशी अलस्तहया, सूरत कसस के आयत 25 में आगे हम पढ़ेंगे। जन्नती हूरों की सिफात देखिए, कासीरातुन तरफ, निगाहें झुकाने वालियाँ, खैमों में रहने वालियाँ, अपने मर्दों के सिवा किसी और की तरफ नज़र नहीं रखने वालियाँ। अम्बिया कराम से हया सीख लीजिए, तो अबू अय्यूब अल अंसारी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 4 चीज़ें रसूलों की सुन्नतों में से हैं, हया, खुशबू, मिसवाक और निकाह करना। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 1080। हज़रत मूसा के बारे में अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो बड़े ही बाहया थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया बदन को ढांकने वाले थे और उनकी हया की वजह से इनके जिस्म का कोई हिस्सा देखा नहीं जाता था। पूरी हदीस सूरत अल अहज़ाब में हम पढ़ेंगे। ये रिवायत लिख लें बुखारी 3404। और नबी सल्लम से हया कैसे सीखें? आप तो फितरी तौर पर बाहया थे। हमने हया सीखी भी तो फिल्मों से सीखी। वो चुलबुल करती, दुपट्टा मुंह में लपेटती, शहरी बाबू को देखकर उछलती कूदती औरत हया कर रही है। आज की बच्ची कहती है मैं नहीं इतनी बेवकूफ़ बनती। आज हया भी वहीं से सीखी। एक तो तलाक देने का तरीका हमने फिल्मों से सीखा और एक हया उधर से सीखी। अगर हमने कुरान से हया सीखी होती तो याद रखे कि आज हमारे मुआशरे पाक होते। इसलिए ओवरऑल सहाबियात और सहाबा किराम बाहयात है। तो शी अल्फाशा के लिए हया को लेकर आना पड़ेगा, और गलत काम करके उसके सीक्वेंसेस का डर, ये हया कहलाता है कि मैं अल्लाह को क्यों मुंह दिखाऊंगी, क्या होगा। घुटन होती है ऐसी महफिलों और ऐसी जगहों पे जाके। तो ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह से भी हया हो, बंदों से भी हया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज़्यादा हम कुरान को पढ़ते जाएंगे, उतना हमें इस बात का यकीन आ जाएगा कि अल्लाह और बंदों तो छोड़िए, अपने जैसे लोगों के खुद से भी हया कीजिए। गलत ख्यालात दिल में आना, इरादों में आना, ये भी बेहयाई है, और हया ईमान का हिस्सा है। आपने फरमाया कि हर मज़हब का कोई ना कोई एक ख़ास वसफ़ होता है, क्राइटीरियन। इस्लाम का वसफ़ हया है। ये इब्ने माजा की रिवायत है 4181। बेहयाई जिस चीज़ में होगी उसको ऐबदार बना देगी, हया जिस चीज़ में होगी उसको खूबसूरत बना देगी। तिर्मिज़ी की रिवायत है 1974। पहले दौर की दुल्हन कैसी होती थी? पोटली होती थी कपड़ों की, इतनी लंबी लंबी किरण लगे दुपट्टों और लंबे घूंघटों में छुपी बच्चियाँ कैसी शर्माती थी। हसीन कितनी होती थी, किस पार्लर में जाती थी, कौन सा लड़का उनको तैयार करता था, फेशियल कौन सा मर्द करता था, कौन उनको कपड़े पहना कर ऊपर जिस्म पे टांके लगाता था कि कोई जिस्म का हिस्सा रह ना जाए खुलने से। तो वो प्यारी थी कि आज की प्यारी है? 5 लाख की दुल्हन भी आज वो प्यारी नहीं है जो उस दौर की एक सुर्खी, सुर्खी जी कहते थे उसको, लिपस्टिक इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, दुल्हन सज गई। कभी पूछिए अपनी दादी से, अम्मा आप किस पार्लर से तैयार हुई थी, फिर जो आपको सलवाते मिलेंगी ना वो आप देखना, अब्बा जी ने आपको क्या तोहफा दिया था। वो कहती है मैंने तो 1 महीना उनसे बात भी नहीं की, मैं तो उनसे घूंघट निकालती थी। हैं थी आपकी नानियाँ दादियाँ, तो नस्लें कितनी प्यारी आई, आप जैसी प्यारी नस्लें। आज भी जिस मियाँ बीवी में हया, उनके बच्चे अच्छे होंगे। तो बहरहाल ये मौजू बहुत बड़ा है, पूरा आपको मैंने पारा पढ़ाना है, लेकिन आप इस दर्द को महसूस करके जो कर सकते हैं वो कीजिए। अपनी बेटियों में हया लाएं, अपने बेटों में हया लाएं। क्योंकि ये हया होगी तो हमारी नस्लें बचेंगी। हया से हयात है, वो कौमें तबाह व बर्बाद कर दी जाती हैं जिनके अंदर से हया ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इन औरतों जिनको हम प्यार और मोहब्बत से जानते और पढ़ते सुनते हैं, इनकी हया को जानिए। खुद नबी सल्लम एक बापर्दा कंवारी औरत से ज़्यादा शर्मीले थे। कोई ऐसी बात आपके सामने कोई कर देता तो आपके चेहरे पे एक गुस्से के असरात आ जाते कि ये वल्गर टॉक क्या होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे, आपकी बीवियाँ ऐसी, आपकी बेटियाँ ऐसी, तो आपको मुझे कैसा होना है। तो ज़रूरत है कि हम इनकी हयाओं को देखें। हज़रत आयशा की हया क्या थी, वो इस बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर भी अल्लाह ने उनको कैसी आजमाइश में डाल दिया। कहा करती थी कि जब मैं अपने हुजरे में दाखिल होती थी जिसमें अल्लाह के नबी थे दफन, तो मैं अपने सर से ये चादर ये सोच कर उतार लेती थी कि इसमें मेरे शौहर और मेरे वालिद हैं। लेकिन जब हज़रत उमर दफन कर दिए गए तो अल्लाह की कसम, मैं हज़रत उमर की हया की वजह से अपनी चादर सर पर लेती थी। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। आपको पता है ना, हजरत आयशा में थे वो। हज़रत फातिमा कितनी बाहया थी कि बाप से अपने लिए ग़ुलाम ना मांग सकी, और कहा करती थी कि मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना, और मेरे गुस्ल में मेरे शौहर और अपनी एक ख़ास दोस्त को कहती थी, उसके अलावा और कोई ना आए। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के बारे में आता है कि किसी सफ़र में से वापस पैदल आ रही थी, इतने में अल्लाह के नबी ऊँट पर सवार उनको मिले, कुछ अंसारी भी थे। तो हज़रत अस्मा के करीब आकर लोगों ने कहा कि आप ऊँट पर बैठ जाएँ, पीछे बैठ जाएँ। तो कहने लगी कि मर्दों को देख कर मैं इतना शर्माई कि मैंने सवार होने से इनकार कर दिया, और वो फिर आगे निकल गए। ये बुखारी की रिवायत है। तो बाहयाब शख्स, औरत हो या मर्द, दोनों में खैर है। और भी बहुत कुछ है, आप बाद में इसको ज़रूर पढ़िए सुनिए, इस मौजू पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन बस हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमें मिसाली बना दे। सहाबा कराम की ज़िंदगियों को देख लीजिए, हज़रत आयशा की ज़िंदगी पे जो वाक़ है, इंशाल्लाह आपको सूरत नूर में उनकी बातें हम करेंगे। हाँ, हज़रत आयशा के बारे में चंद बातें नोट करें। जो 9 खूबियाँ, यानी जो कह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस, जो दूसरों में नहीं थी। नंबर एक, फरिश्ता हज़रत आयशा को नबी सल्लम को दिखाने के लिए लाया था, यानी आपसे निकाह से पहले आपकी तस्वीर फरिश्ते के जरिए आपको दिखाई गई थी। हालांकि आप देखते थे उनको, लेकिन इशारा था कि इस बच्ची से आपका निकाह होगा। फिर आप छोटी उम्र में निकाह में आईं, कुंवारी थीं, 9 साल की उम्र में रुख्सती हुई। आपके बिस्तर पे वही नाजिल हुआ करती थी। हज़रत आयशा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी देखा, और नबी पाक की महबूब तरीन बीवी थी। आपके लिए कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई, जो आज हम पढ़ेंगे इस बारे में इंशाल्लाह। इल्म, तक्वा और इन्फाक में बेमिसाल थी, और नबी सल्लम की वफ़ात आयशा की गोद में हुई रदियल्लाहु अन्हु। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और उनको राज़ी कर दिया। इस बारे में से जो दुआ हमारे सामने है, सूरत मोमिनून की आयत 29 है, किसी भी जगह उतरने या नई जगह जाने की दुआ। रब्बी अनजिलनी मुनजलम मुबारक व अंता खैरुल मुनजिलीन। परवरदिगार मुझे बरकत वाली जगह पर उतार, और तू बेहतरीन उतारने वाला है। कहीं भी जाएँ तो ये दुआ मांग लिया करें। फिर वक़ुर रब्बिक फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ए मोहम्मद, कह दीजिए मेरे रब दरगुजर फरमा, तू रहम कर, और तू सब रहीमों से ज़्यादा अच्छा रहीम है। और अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। चलिए अब तर्जमा पढ़ते हैं। सूरत मोमिनून के शुरू से 118 आयात हैं, 23rd नंबर सूरह है। यहाँ एक खूबसूरत सी चीज़ नोट की आपने, सूरत बकरा के शुरू में हमने हिदायत के अतबार से 3 गिरोहों का तذکرہ देखा, मोमिनीन, कुफ्फार, काफिरीन और मुनाफिकीन। नामों के बगैर भी था। कुरान में तीनों नाम की सूरतें हैं, उनमें से पहली सूरत आज मोमिनून। सूरत मुनाफिकून 28 पारे में पढ़ेंगे, और सूरत काफिरून 30वें पारे में। और अल्लाह हमें मोमिन बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशियून। इस सूरत की शान नज़ूल में एक वाक़िया है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत है तिरमिज़ी में। अल्लाह के नबी पर जब वही उतरती तो आपके मुंह मुबारक से शहद की मक्खियों की बिन बिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती। एक दिन आप पर वही नाजिल हुई। साहबी कहते हैं कि हम कुछ देर आपके पास ठहरे रहे, फिर जब वही की कैफियत ख़त्म हुई तो आपने क़िबले की तरफ मुंह किया और हाथों को बुलंद किया, और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना। आप भी दुआ करिए, और मैं भी आप सबके लिए, अपने लिए भी दुआ करूँगी। اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وردنا وردانا. یہ ایک لانگ ورژن ہے. ادھر کیا ہے؟ اے اللہ ہم میں اضافہ کر اور ہم میں کمی نہ کر, ہمیں خوش رکھ, ہم سے راضی ہو جا. پھر فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں, جو ان پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ نے یہ آیات پڑھی قد افلح المومنون سے آگے تک. تو اللہ ہمیں انہی کے مطابق بنا دے, ہمارے بیٹوں کو, ہمارے مردوں کو, ہماری بیٹیوں کو اللہ انہی 10 آیتوں کے مطابق بنا دے. آپ کے بارے میں آتا ہے کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ سے کسی نے ایک موقع پہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے, تو کہا تم نے سورت مومنون کی شروع کی آیتیں نہیں پڑھی, آپ ایسے تھے. اب آپ اپنی امیجینیشن میں, جو میں نے آج آپ کو تھوڑا سا ایک پری فیس یا ایک تمہید دی ہے, وہ کردار لائیے ذہن میں. آپ کے شوہر میں یہ خوبیاں آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کے بیٹے میں تو آپ کی بہو کو کیسا لگے گا؟ تو یہ ہے کردار سازی, اس کو کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ. اللہ ہماری اس پارے کے دوران کر دے. چلیے 1 سے 22. فلاح پانے والے, رکوع نمبر 1, قد افلح المؤمنون. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں, اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں, اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, یا زکوٰۃ بمانی تزکیہ, اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیوی اور ملکیت کی لونڈیوں کے. یقیناً یہ ملامت کیے ہوئے میں نہیں ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, اور جو اپنی امانت اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں, جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں, اولئک ہم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں جنت الفردوس کا تذکرہ ہے, پہلا سورت کہف کے اینڈ پہ. اس کا 2 دفعہ یہ نام ہے قرآن میں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے قابل کر دے. اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پر قرار دے دیا, مراد یوٹرس ہے. پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا, پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا, پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی, پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا, پھر دوسری ہی بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. برکتوں والا ہے اللہ, جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا, احسن الخالقین. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو. ٹوٹی کہاں پہ کمن, جو مرضی کر لو پھر تم سب مر جاؤ گے. اپنے اوپر لیجئے, اتنا کچھ پا کر پھر میں مر جاؤں گی؟ اتنا حسین بنایا اللہ نے مجھے, پھر میں مٹی میں چلی جاؤں گی؟ اتنے پیارے کپڑے ہیں میرے پاس, میں مر جاؤں گی؟ اتنا پیارا کمرہ میرا, اتنا پیارا گھر, میرے اتنے پیارے بچے, میرے پاس اتنی اچھی گاڑی, پھر میں مر جاؤں گی؟ چلو مر بھی گئے ہوتے تو کافی تھا. نہیں, پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. ساری کشش نہیں ختم ہو جاتی دنیا سے؟ تو دنیا ضرورت ہے, مقصد نہیں. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے, اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں, اور ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں, پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں, اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. اللہ چاہے تو سارا پانی اڑ جائے, اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے بھی ہوتے ہیں, اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا یا طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے, جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے, اشارہ ہے زیتون کی طرف. ہمارے کلچر میں عام نہیں ہے, ادروائز اس کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں بھی. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے, ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں, اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو, اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. اس سے پہلے دودھ کا ذکر کہاں آیا؟ سورۃ النحل میں. پھر سوچئے گا, بچوں سے شیئر کریے گا, اگر آپ ملک شیک پلا رہے ہیں نا ان کو مزے کا, تو ان کو بتائیے گا بیٹا آج ہم نے یہ آیت پڑھی تھی, آج بنا لیجئے گا, تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ قرآن میں کھانے پینے کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ 10 آیات, اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق انہی آیات سے متعلق تھا, اور اللہ ہمیں آپ کو ایسا بنا دے. سورۃ مومنون کیا ہے؟ صحابہ کرام کا آئینہ. پہلے تو دل چاہ رہا ہے دعا دوں آپ کے سب کے بیٹے ایسے بن جائیں, آپ سب کے بھائی ایسے بن جائیں, آپ سب کے شوہر ایسے بن جائیں, اور ہم سب بھی ایسی بن جائیں. دیکھیے گا کیا تھی ان کی خوبیاں. پہلے تو ایمان بڑا پیارا تھا, پھر اس کے بعد نماز کی حفاظت اور نماز کا خشوع تھا، لغویات سے اعراض کرتے تھے، زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے تھے اور اللہ کی حدود میں رہتے تھے. انجام کیا ہے؟ مراد کو پہنچنے والے. کیا مراد کو پہنچے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. پھر اب دیکھیے کہ آیت 14 میں ہم نے ماں کے پیٹ میں بچے کی مختلف کیفیات کو دیکھا. اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ڈاکٹرز پریشان ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں یہ جو نطفہ، علقہ، پھر مدغہ، پھر اس کے بعد عظام، پھر لحم، یہ سارے سٹیپس ایگزیکٹلی آج کے امبریولوجسٹ ان سب چیزوں کو پروف کرتے ہیں. اور وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا جس نے اس علم کو ڈسکور کیا، اور اس کو تھا کہ میں پہلا شخص ہوں جو یہ ماں کے پیٹ کے مختلف مراحل بتاتا ہے. تو جب اس کو بتایا کہ قرآن میں تو یہ 1400 سال سے ہیں، تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور اپنے آپ کو سوچئے، میں اور آپ کہاں سے چل کے آج کہاں پہنچے، اور آگے ہمارا انجام کیا ہے. نطفہ کیا ہے؟ مادہ تولید. علقہ ہے جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیلی. مدغہ گوشت کی بوٹی. عظامن ہڈیوں کو کہتے ہیں، ہڈیوں پہ گوشت ہے. لحمن اور ایک جیتا جاگتا عقل اور شعور رکھنے والا انسان طفلن کی صورت میں آپ کے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. ثم خلقنا نطفہ. کتنے ناممکن طریقے سے ایک بچے کو دنیا میں اللہ لاتا ہے. اور اتنا انیوژل یہ واقعہ ہے، آپ کی کسی مشین سے کیا بن کے نکلتا ہے؟ ہم اکثر کن چیزوں سے خوش ہوتے رہتے ہیں؟ کافی میکر، جی ہم نے ادھر سے ڈالا ادھر سے کافی بن کے آ گئی، ٹک ٹک کیا پیسے ڈالے چیز نکل آئی. کیا کافی میکر اور کیا نطفے سے بچہ. لیکن چونکہ روز ہو رہا ہے، فری میں ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، امیروں کے بھی ہو رہے، غریبوں کے بھی ہو رہے. اللہ اکبر. بخاری کی روایت لے لیجئے 6595، حضرت انس راوی ہیں، اللہ کے نبی نے ماں کے پیٹ میں جو فرشتے کے مقرر کرنے کی بات کی اور نطفے اور اس سب کو بنانے کے بعد تقدیر بھی بنا دی. آپ اس حدیث کو بعد میں آرام سے پڑھیے گا اور لکھ لیجئے گا. لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں کہ اللہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. آج کے دور کی تشیع الفاحشہ میں بچے کو چوائس دی جا رہی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کا نام میل اور فیمیل میں لکھیں. آج یہ لا پاس ہو گیا، آپ نہیں لکھ سکتے بوائے گرل، مقدمہ کر دے گا بچہ آپ پہ. بڑا ہوگا خود بتائے گا میں بوائے ہوں کہ گرل، ماں کے پیٹ میں آ گئی. یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے نے یہ چیز تو پڑھی کوئی نہیں، تو وہ تو وہی کہے گا نا دیٹس اوکے. اور کل کیا کہیں گے؟ کیا ہے ایکسٹریمزم، پھر کیا ہے، اٹس اوکے، اس کو ہونے دیجئے نا بوائے، وہ اب گرل بننا چاہتی تو بننے دے، وائی آر یو مام سو آر ریجیکٹ، پھر ایسے باتیں کریں گے. اللہ ہم سب پہ رحم کر دے. پھر اس کی روزی روٹی، موت، زندگی، یہ سب ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعوت حق کا کام کرنا، قرآن سیکھنا ہے، پھر سیکھنا سکھانا ہے، پھر سکھانا ہے، اور ساری زندگی اسی پہ کھپ جانا ہے. آخری دن تک اللہ ہم سے یہ کام لے لے، جو خوبی اللہ وہ کام ہم سے لے لے. ہم لکھ سکتے ہیں لکھیں، بول سکتے ہیں بولیں، پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، صفائی کر سکتے ہیں اللہ صفائی کرا لے، گھر دے سکتے ہیں گھر دلوا دے، گاڑی دے سکتے ہیں گاڑی دلا دے. ایک چھوٹا سا تار بن جاتے ہیں نا، اس رستے کا اللہ میں وہ بنا دے. اپنی ساری سکلز کو لا کر اللہ کے رستے میں پیش کیجئے کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے. پھر عمل کے نقطے، نمازوں میں خشوع، لغویات سے اعراض، شرمگاہ کی حفاظت، زکوٰۃ ادا کرنا، امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کی پاسداری. اللہ آسان کر دے.